तफसीर आयत नंबर 32 का निचोड़ हमारे सामने ये आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कत्ले नहक के बाद इंसानी जान की कदर कीमत को वाजे करने के लिए बनी इसराइल पर ये हुक्म लिख दिया था, ये हुक्म नाजिल कर दिया था कि अगर किसी ने एक को कत्ल किया तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया, और अगर किसी ने किसी एक की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श दी। इससे क्या बात पता चलती है कि इंसानी खून की कितनी अहमियत और तकरीम है। और ये बात भी आप याद रखें कि ये हुक्म जो था ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं था बल्कि हमारे लिए भी था, और इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक है। सुलेमान बिन रबई कहते हैं कि मैंने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या ये आयत हमारे लिए भी है जिस तरह बनू इसराइल के लिए थी? उन्होंने फरमाया, हाँ, कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बनी इसराइल के खून अल्लाह के हाँ हमारे खूनों से ज्यादा काबिल एहतराम नहीं थे। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जो इंसानी जिंदगी है, जो इंसानी जान है, इसका एहतराम करना चाहिए। और इसी चीज की तालीम देने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से रसूलों को भेजा जो खुली खुली हदायात लेकर आए, लेकिन फिर भी लोग क्या करते रहे? जमीन में असराफ करते रहे, ज्यादतियां करते रहे। आयत नंबर 33, आयत नंबर 34, इन्हें आयाते मुहारबा कहा जाता है। मुहारबा, मुहारबा किसे कहते हैं? हा रा बा हर्ब से है, और हर्ब जो है ये जंग को कहते हैं। मुहारबा के लुगवी मानी है मुखालफत करना। इस्तलाह शरीयत में कुफर, डाका जनी, लूट मार, दहशत गर्दी, उस पर जो है वो महारबा का इतलाक होता है। आप हर्ब से याद रखिए। इन्नमा जजा उल्लजीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू। इन्नमा जो है इसको कलमा हसर भी कहते हैं, और इसका तर्जुमा इस तरह भी होता है कि इसके सिवा कुछ नहीं, यानी सिवाय इसके नहीं। जैसे आप सूरत अल फातिहा में पढ़ते हैं इया का, इया जो है ये कलमा हसर है। जैसे ये लफ्ज जो है जैसे हिसार के लिए, अहमियत के लिए आता है, जैसे तेरी ही, यहाँ पे भी ये है इन्नमा, सिवाय इसके नहीं, जजाऊ के बदला है। अल्लज़ीना वो लोग, युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, जो लड़ते हैं अल्लाह से और उसके रसूल से। तो मुहारबा के मानी क्या है? मुखालफत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की, तो उनका बदला जो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ते हैं। और साथ ही कहा वह यसऊना फिल अर्दी, और जमीन में सही करते हैं। सही जो है यहाँ पे सही के मानी है दौड़ते हैं, दौड़ धूप करते हैं, कोशिश करते हैं, तगो दौ करते फिरते हैं। तो एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से वो लड़ते हैं, दूसरी तरफ वो जमीन में इसलिए दौड़ धूप करते हैं, क्या करने के लिए? फसादन, कि वो फसाद भरपा करें, जमीन के सुकून को तबाह करें। और जमीन के जो वसाइल हैं वो इंसान की तरक्की की बजाय इंसान की बर्बादी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब आप देखें कि अगर कहीं भी छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर कत्लो गारत, डाका जनी, या फिर डकैती, चोरी, या किसी को सताना, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये जमीन में फसाद पैदा करना है, जमीन के सुकून को जो है वो बर्बाद करना है। तो यहाँ पे इसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है ये दरअसल अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ते हैं, जमीन में इसलिए दौड़ धूप करते हैं कि फसाद पैदा करें। अब यहाँ पे जो है आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि इनकी सजा क्या है। सबसे पहले फरमाया अई युकत्तलू, उनकी सजा ये है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, औ युसल्लबू, या उन्हें सलीब पर चढ़ाया जाए, सूली पर लटकाया जाए, औ तुक़त्ता अईदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन, या फिर काटे जाएं, काट डाले जाएं हाथ उनके, यद एक को कहते हैं और अईदी जो है ये जमा है, हाथ उनके, व अर्जुलहुम और पांव उनके, रिजल एक पांव को कहते हैं और अर्जुल जो है वो उसकी जमा है, और उनके पांव जो है वो काट डाले जाएं, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिम से, कि इनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव जो है वो काट डाले जाएं। इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो चार सजाओं का जिक्र किया है, जिनमें से खास तौर पर पहली जो तीन सजाएं हैं इनमें देखें तो औ युकत्तलू, औ युसल्लबू, औ तुकत्ता अईदीहिम अर्जुलहुम मिन खिलाफिन, तो ये जो कत्ल करना है और सूली पे चढ़ाना है और हाथों को काटना है, पहली तीन सजाओं में जो है वो मुबालगे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और मुबालगा जो है इसके मानी क्या है, यानी ये भी हो सकता था ना कि यहाँ पे अल्लाह ताला ये कह देते नहीं यो कत्लू की बजाय कहते कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे बाबे तफील इस्तेमाल किया गया है, इसके मानी में शिद्दत पाई जाती है, कसरत पाई जाती है। जैसे किसी को कत्ल किया जाए तो जैसे उसको मार दिया, लेकिन अगर कहेंगे ना तकतील, बाबे तफील यानी तकतील, तो उसका मतलब है टुकड़े टुकड़े करना, उसको जो है वो इबरत अंगेज और सबक आमोज तरीके पर कत्ल करना, ये है इसके मानी। जो उसको कत्ल किया जाएगा तो कत्ल करने में क्या है कि छोटा छोटा करके, या फिर ये कि बड़ी शिद्दत है इसके अंदर, तो यहाँ पे मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया गया तीनों में, अयुकत्लु युसल्लबु तुकत्ता, तीनों में यहाँ पर जो है ये मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो कत्ता में भी देखें काफ तोए आयन, इसका मतलब होता है काटना, इसलिए भी शिद्दत पाई जाती है, जैसे टुकड़े टुकड़े कर देना। तो अब यहां पर ये जो तीन सजाओं का जिक्र है, इसमें सबसे पहली जो सजा है वो ये कि ये लोग जमीन में चूंकि फसाद पैदा करते हैं, मुल्क में अवाम के अमनो सुकून को बर्बाद करते हैं, तो अल्लाह का जो कानून शरई है, जैसे जहां पे इस्लाम नाफिज है तो क्या है कि लोगों की जान माल का तहफुज है, तो ये क्या करते हैं कि इस्लाम के जरिए जो लोगों को अमन अमान नसीब हुआ है ये उसको बर्बाद करते हैं, तो इसलिए इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ना कहा गया है। तो इन्होंने अल्लाह के दिए हुए अमन को तोड़ा, वो अमन जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो है वो जहूर हुआ, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया, तो ये इनकी सजा फिर क्या है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो सबसे पहले कहा कि अयो कत्तालू, तो मुफस्सरीन कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि इन्होंने जो है जब किसी को कत्ल किया है ये डाका डालने वाले, तो इनको भी कत्ल कर दिया जाए। फिर इसके बाद जो है वो दूसरी सजा क्या है, अयुसल्लबू, सलीब है ना, स्वाद लाम बा सल्ब इसका रूट है, उसी से सलीब है, जैसे किसी को जो है वो फांसी पे चढ़ाना तो उसको सूली पे चढ़ाया जाए, तो अगर उन्होंने माल भी लिया है और कत्ल भी किया है तो उनको सूली पे चढ़ाया जाए। तीसरी सजा क्या है कि उनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से काटे जाएं, यानी दायां हाथ या बायां पांव काटा जाए। ये वो हालत है कि सिर्फ माल लिया है, कत्ल नहीं किया, सिर्फ माल लिया है कत्ल नहीं किया, तो उनको ये तीसरी सजा जो है वो दी जाए। तो चौथी सजा क्या है, औ युनफौ मिनल अर्द, युनफौ जो है का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, इसका रूट है नून फा वो, नून फा या, इसके मानी होते हैं जलावतन करना, मुल्क से निकाल देना, किसी को जो है वो निकाल देना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको जो है वो जलावतन कर दिया जाए। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे जो चार सजाओं का जिक्र है, अब ये जो है वो जो काजी है या इमाम वक्त है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जुर्म की नौइयत के मुताबिक सजा दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो इन चारों में से कोई एक सजा दे, ये भी हो सकता है कि वो चारों दे, या इसमें इन इनमें से दो दे दे, तीन दे दे। तो वो जो है मुजरिम के जुर्म के मुताबिक जो है वो मुजरिम को सजा देगा। एक भी हो सकती है और इन चारों में से एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो औ युनफाउ मिनल अर्द, फिर चौथी सजा का जिक्र किया गया कि इनको जो है वो जलावतन कर दिया जाए, कि जो ऐसी जमीन है, जो आजादाना जमीन जिस पर ये आबाद है, इनको वहां से निकाल कर या तो कहीं और भेज दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। तो जेल में डालना भी दरअसल जो है उसकी आजादी को फिर खत्म करना है। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरती अज़ाबुन अज़ीम, ये जिल्लत और रसवाई तो उनके लिए दुनिया की जिंदगी में है और आखिरत में उनके लिए इससे बड़ी सजा है। तो खिज़्युन जो है वो इबरतनाक सजा को कहते हैं, ऐसी सजा जिससे लोगों को जो है वो रसवाई हो। तो कहा कि दुनिया में तो रसवाई वाली सजा है और आखिरत में इनके लिए इससे भी बड़ी सजा है। वलहुम फिल आखिरती अज़ाबुन अज़ीम, इससे भी बड़ी सजा है। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरु अलैहिम, मगर वो लोग जो तौबा कर लें कबल इसके कि तुम इन पर काबू पाओ। तक़दिरु, तक़दिरु जो है जैसे कुदरत हासिल करना, काबू पाना, इसके मानी ये है कि जैसे अब आप देखें कि जिसने डाका डाला है, अब डाका डालने वाला जो है उसने डाका डाला, कत्ल किया, जो भी उसने जो है वो जरायम किए हैं, तो अभी उसको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया था। तो अगर वो गिरफ्तार करने से पहले तौबा कर लेता है तो फिर तो उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर उसको ये जो सजाएं बताई गई हैं वो इनमें से कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर डाकू जो है डाका डालने के बाद जब उसको पकड़ लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर वो तौबा करता है फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो यहां पे यही बात कही जा रही है कि मगर जो लोग तौबा कर लें कबल इसके कि तुम इन पर काबू पाओ, काबू पाने से मुराद कि उनको गिरफ्तार करने से पहले ही अगर डाकू जो है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो तौबा करते हैं तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। इस सिलसिले में भी ये बात आप याद रखें कि जैसे मसलन डाकू ने तौबा कर ली, अभी उसको किसी ने पकड़ा नहीं था, गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन उसको खुद ही अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तौबा कर ली। तो अब इस सिलसिले में जो अल्लाह का हक है ना, तो अल्लाह अपने हक को माफ कर देगा, अल्लाह जो है उस पर मेहरबानी करेगा, लेकिन बंदे के हकूक जो है वो माफ नहीं होंगे। मसलन क्या कि उसने जो डाका डाला था, किसी का माल छीना था, या उसने किसी को कत्ल कर दिया, उसने डाका डाला, माल लिया, उसके साथ उनको कत्ल भी किया, तो अब जो है ये जो छीना हुआ माल है, जिसका उसने माल छीना है, जिसको उसने कत्ल किया है, तो जो वो साहिब माल है और वो जो वली मकतूल है, जब तक वो माफ ना करे तो उसको माफी नहीं मिलेगी, उसका कसास लिया जाएगा, उसका बदला जो है वो लिया जाएगा। फालमु अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बस खूब जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पे मैं ये बात भी आपको बताती चलूं कि अब आप देखें कि यहाँ पर फिर से ये बात कही जा रही है कि खूब जान लो कि अल्लाह जो है वो अल्लाह कैसा है, अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह गफूर रहीम बख्शने वाला, रहम करने वाला है, कि अगर उसने माफी मांग ली है, अगर उसने तौबा कर ली है, तो वो तौबा करता है और सच्चे दिल से तौबा करता है तो बेशक अल्लाह भी बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो जहां तक अल्लाह की माफी की बात है कि उसने जो माफी मांगी तो अल्लाह की उस माफी की कबूलियत की बात है तो अल्लाह जो है वो उसको माफ कर देगा। लेकिन फालमू जो है ना, इसके लफ्ज को अगर आप जोर देकर अपने जहन में रखें तो इससे ये बात पता चलती है, फालमू खूब जान लो कि गिरफ्तार होने से पहले ही तौबा और इसलाह करने वालों के मामले में हुकूमत के लिए कोई इंतकामी कार्रवाई जायज नहीं है। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है। जब वो पकड़ने से पहले अगर तौबा और इसलाह कर लेता है तो अल्लाह उनको माफ करने वाला है। तो जब अल्लाह उसको माफ करने वाला है क्योंकि गिरफ्तार होने से पहले डाकू ने तौबा कर ली है, तो फिर बंदों को का रवैया भी उनके साथ जो है वो सख्ती का नहीं होना चाहिए, इल्ला ये कि उसने किसी का माल छीना है या किसी को कत्ल किया है तो फिर उसके लिए जो है उसको जो है वो साहिबे माल का माल उसको वापस करना होगा, या फिर ये कि कातिल जो है वो उसके लिए कसास करना, या फिर वो लोग घर वाले जो है वो उसको माफी कर दें। यहाँ पे मैं एक और बहुत अहम नुक्ता आपके सामने रखती हूँ कि शरई सजाओं की 3 किस्में हैं, एक हुदूद, दूसरा कसास और तीसरा ताजीरात। हुदूद, हुदूद हद वाहिद है, हुदूद इसकी जमा है, और जो हुदूद है इसे जो है वो उन सजाओं को हुदूद कहा जाता है जिनमें अल्लाह का हक जो है वो वाजिब है, अल्लाह का हक जो है वो मुतय्यन किया गया है और फिर सजा जारी की गई। हुदूद 5 है, शरीयत इस्लाम में हुदूद की तादाद 5 है। नंबर 1 डाका, नंबर 2 चोरी, नंबर 3 जिना, नंबर 4 तोहमते जिना। ये 4 सजाएं जो है ना, इनकी जो ये 4 गुनाह करता है या गलती करता है या जुर्म करता है तो उसकी सजा कुरान ने मुकरर कर दी। इसमें से 2 जो है वो सूरत नूर में आप पढ़ेंगी और 2 अभी आप यहाँ पे पढ़ रही हैं, एक डाका और आगे आप चोरी के बारे में पढ़ेंगी। तो 4 जो गुनाह हैं इनकी सजा तो कुरान ने मुकरर कर दी। और 5वीं भी एक हद है, वो है शराब पीना। तो 5वीं जो है ना, ये भी सहाबाए कराम के अजमा से साबित है। तो इस तरह कुल 5 जराइम की जो सजा है उसको हुदूद कहा जाता है। हुदूद के मामले में आप ये बात याद रखें कि काजी जो है, कोई हाकिम, कोई अमीर, कोई अदालत इन हुदूद को ना कम कर सकती है ना माफ कर सकती है, ना इनको बढ़ा सकती है ना इनमें कमी कर सकती है। और अगर कोई तौबा भी कर लेता है तो दुनिया की जो सजा है ना हद, उसमें माफी नहीं है। अलबत्ता रही आखिरत की बात तो अल्लाह जो है वो उस बंदे के साथ जो चाहे जो है वो मामला कर ले। तो ये आयत नंबर 33, इसमें जो है वो डाका जनी की सजा जो है वो सजाएं बताई गई। 4 सजाओं में से चारों भी दी जा सकती हैं और कोई एक भी दी जा सकती है। ये भी काजी और अदालत पर डिपेंड करता है। और बाकी रही कि अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह का हक जो है वो, अल्लाह चाहे तो अपना हक माफ कर दे, लेकिन बंदों का हक जो है जब तक बंदे माफ ना करें तो माफी नहीं हो सकती। तो पहली सजा की जो किस्म है इसको हुदूद कहा जाता है, दूसरी जो सजा है उसको किसास कहा जाता है, किसास। और जो किसास है आप पीछे भी पढ़ चुकी हैं, किसास के जो है वो जिसमें बंदे का हक जो है वो नुमाया होता है। और किसास जो है उसको भी अल्लाह ताला ने हमारे सामने वाजे करके रख दिया कि जो है वो नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, जान के बदले जान, मर्द के बदले मर्द। अगर किसी ने किसी मर्द को कत्ल किया तो फिर वो ही औरत है, तो फिर औरत। तो दूसरी किस्म जो है वो किसास कहलाती है, किसास। फिर किसास का भी हमें कहां से पता चलता है, इसकी तफसील भी और तशरीह भी हमें कुरान से पता चलती है। और तीसरी किस्म जो है ये ताजीर है, ताजीर। ताजीर जो है ये जो है वो ये भी एक सजा है और इसमें जो है वो वक्त की जो अदालत होती है उस पर जो है वो इसका इन्हिसार होता है कि वो जो भी मुजरिम है उसको उसके जुर्म के लिहाज से वो कितनी सजा जो है वो देना चाहती है। तो ताजीर जो है इस सिलसिले में जुर्म के मुताबिक, मुजरिम के जुर्म के मुताबिक जो है वो फिर सजा दी जाती है। तो हाकमे वक्त जो है वो जितनी चाहे ताजीरी सजा दे सकता है, जितनी और जैसी मुनासिब समझता है। तो जहां तक बात है किसास की, तो किसास में भी जो है वो कोई चाहे तो घर वाले मुजरिम को माफ कर सकते हैं। जहां तक बात है हुदूद की, तो हुदूद को जो है वो जारी करना, उनको जो है वो देना, ये हुकूमत, इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो यहां पर भी अब आप देख लीजिए कि ये जो डाका जनी की सजा है ये हद कहलाती है। फिर इसके बाद आयत नंबर 35 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाहा, अल्लाह से डरो। अब आप देखें कि अल्लाह से डरने की बात आ रही है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तो आप पहले आपने डाका जनी के बारे में पढ़ा, इस आयत के बाद अगली जो आयत है आयत नंबर 38, वहां पे आप चोरी के बारे में पढ़ेंगी। तो बीच में जो है वो तकवा का जिक्र आ गया। तो डाका, बगावत ऐसा जुर्म है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाका और चोरी के दरमियान तीन आयतें ऐसी हैं जिसमें तकवा, अतात, इबादत, जिहाद की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है। तो पहली चीज जो है वो अल्लाह का खौफ है जो इंसान को हकीकी तौर पर खुफिया और एलानिया हर तरह के जराइम से जो है वो रोकता है। तो ये जो कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, इसके मानी है कि अल्लाह के अहकाम की मुखालफत से बचो। इसके मानी ये है कि दूसरों का जो जान और माल है उसको छीनना और दिन दिहाड़े छीनना उनके उनके सामने, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो लोगों, ये जो गुनाह है इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद फरमाया, वक्तगु इलैहि वसीलता, वक्तगु बगा यबगी, चाहना, ये अच्छे मानों में भी इस्तेमाल होता है और बुरे मानों में भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे इलाका जो है वो सिला आया है, इसकी प्रपोजिशन आई है, और तलाश करो इलेही अल्लाह की तरफ, उस तक, तो अल्लाह की तरफ जो है वो तलाश करो, अल वसीला का वसीला, कि अल्लाह का कुर्ब जो है वो तलाश करो, अल्लाह का कुर्ब ढूंढो। यहां पर आप देखें तो वसीला का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, इसका रूट है वो सीन लाम, इसके मानी होते हैं मिलना, जुड़ना। ये स्वाद के साथ भी इस्तेमाल होता है, जैसे वो सीन लाम और वो स्वाद लाम। अगर वो सीन लाम हो तो मानी है मिलना, जुड़ना। अगर स्वाद के साथ हो ना वो स्वाद लाम, तो मानी होते हैं रगबत और मोहब्बत के साथ मिलना। तो वसीला, वसला, हर उस चीज को कहते हैं जो दो चीजों के दरमियान मेल और जोड़ पैदा करे, खा वो मेल जोड़ रगबत और मोहब्बत से हो या किसी दूसरी चीज से हो। और अब अल्लाह की तरफ से फिर वसीला क्या चीज है कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, मुराद है हर वो चीज जो बंदे को रगबत और मोहब्बत के साथ अपने माबूद के करीब कर दे। सलफ सालीन, साहबा, ताबईन ने इस आयत में वसीले की जो तफसीर बयान की वो कहते हैं इससे मुराद है अतात, कुर्बत, ईमान, अमले सवाले। तो इस आयत की तफसीर का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करो ईमान और अमले सवाले के जरिए। तो ईमान और अमले सवाले के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाए। तो वसीला के मानी फिर क्या है, ऐसी चीज के जो किसी मकसूद के हुसूल या उसके कुर्ब का जरिया हो, ऐसे अमाल इख्तियार किए जाएं जिससे तुम्हें अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल हो जाए। ये आम बात। तो अल्लाह की रजा और अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल हो सकता है कि बंदा जो है वो अपने रब का कुर्ब हासिल कर सकता है जब वो हराम चीजों को छोड़े, जिनसे अल्लाह ने मना किया है उनसे वो बचे, और वो काम करे जो कि अल्लाह ने जिनका हुक्म दिया है, और अल्लाह जिन कामों को पसंद करता है तो फिर बंदे को जो है वो अल्लाह का वसीला जो है वो मिल सकता है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक वसीला, वो कहते हैं इसके तीन मानी हैं। नंबर एक, वाजिबात और मुस्तहबात के जरिए अल्लाह की कुर्बत हासिल करना। जैसे बहुत से लोग अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं ना, तो जब तक वो फर्ज अदा नहीं करेंगे अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के हुजूर दुआ और शिफात करवाना, और ये तो सिर्फ आपकी जिंदगी में हो सकता था। सहाबा ने मुख्तलिफ मौकों पर आपसे दुआएं करवाई हैं, और फिर कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए जो शिफात है ये। तो दूसरी बात क्या थी वसीला की, कि रसूल अल्लाह से उनकी जिंदगी में दुआ की दरखास्त करना जो सहाबा ने करवाई। फिर तीसरी चीज ये है कि बाज लोग जो हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद भी आपकी जात का हवाला देते हैं, और जो है वो दुआ वगैरह जो है वो करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपकी वफात के बाद जो है वो आपकी जात का हवाला देकर जो है वो दुआ नहीं मांगी, और ये चीज अगर आज कोई करता है तो ये चीज जो है ये सही नहीं है कि आपकी जात का हवाला देना आपकी जिंदगी के बाद जबकि आप दुनिया से जा चुके हैं। जैसे आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने सहाबा को एक हदीस सुनाई थी, और उसमें क्या था कि नेक अमाल का वसीला देना, जैसे अपने ही नेक अमाल को वसीला बनाया जाए। और उस सिलसिले में आप वो तवील हदीस जो बुखारी में रवायत हुई है आप उसको अपने सामने ला सकती हैं, कि बनी इसराइल के तीन लोग जो एक दफा सफर पे जा रहे थे, रास्ते में जब आंधी तूफान आया तो उन्होंने एक गार में पनाह ली, और इत्तफाक से एक बड़ा पत्थर पहाड़ के ऊपर से लुढ़कता हुआ आया जिसने गार का मुंह बंद कर दिया। अब वो तीनों अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हैं, और उस वक्त उन्होंने सोचा कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, और इस वक्त दुआ ही जो है हमारे काम आ सकती है अगर अल्लाह कबूल कर ले। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, बड़ी सख्त मुश्किल वक्त था, और उन्होंने अपने नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह से दरखास्त की थी, वो नेक अमल जो उन्होंने खालिस अल्लाह के लिए किए थे। तो तीनों ने जो है अपने अपने नेक अमल का जो है वो हवाला दिया, अपने नेक अमल को वसीला बनाया, हत्ता के पूरा पत्थर गार के मुंह से हट गया और वो जो है वो बाहर निकल आए। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अपने नेक अमल जो है उनका हवाला देकर अल्लाह से जिंदगी में दुआ मांगी जा सकती है। फिर इसी तरह से कोई नेक इंसान है अगर, तो नेक इंसान से दरखास्त की जा सकती है कि आप मेरे लिए ये दुआ करें। जैसे हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह के जमाने में जब तहत पड़ता तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह के वसीले से दुआ करते। वो कहते, या अल्लाह पहले हम तेरे पास अपने पैगम्बर का वसीला लाया करते तो पानी बरसाता था, तो तू पानी बरसाता था, अब अपने पैगंबर के चचा का वसीला लाए हैं, हम पर बारिश बरसा। रावी कहता है कि फिर बारिश हो जाती, इसे बुखारी ने रवायत किया है। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सहाबा रसूल अल्लाह से दरखास्त करते थे, आप दुआ करते अल्लाह दुआ कबूल करता, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो आपके चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह से ये सहाबा जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह दरखास्त करते तो दुआ जो है वो कबूल होती। तो प्यारी बहनों, अब तक जो वसीला के सिलसिले में हमारे सामने बातें आई कि अल्लाह का वसीला, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया जा सकता है, तो इसमें एक तो ये है कि वाजिबात और मुस्तहबात के जरिए अल्लाह की कुर्बत हासिल करना। दूसरा इसके अंदर ये चीज आती है कि जिंदा नेक इंसान का वसीला, जो जिंदा हैं और नेक हैं तो उनसे दरखास्त कर सकते हैं जाकर के आप हमारे लिए अपनी दुआओं में हमारा हिस्सा रखें या दुआ करें। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह जो थे हजरत अब्बास रजी अल्लाह से दुआ की दरखास्त करते थे। फिर तीसरी चीज ये पता चलती है कि नेक अमाल का वसीला जो है वो दिया जा सकता है। اور وسیلہ کے سلسلے میں ایک اور حدیث بھی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ وسیلہ جنت میں عرش رحمان کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے. اذان کے بعد کی دعا میں بھی ہمیں جو ہے ہم یہ بولتے ہیں کہ اے اللہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا.